आर्यांश जहां कियाना के साथ बिजी था, वहीं दीवा प्रियंक के साथ थी। प्रियंक ने साइकोलॉजी की स्टडी की थी, इसलिए वो दीवा से बातों ही बातों में उसकी और आर्यांश के रिश्ते का सच उगलवाना चाहता था। दीवा अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रही थी, लेकिन फिर भी प्रियंक ने काफी हद तक कुछ चीजें पता कर ली थी। दीवा जब वहां से जाने को हुई तो प्रियंक ने उसे डिनर पर ले जाने की बात कही। दीवा ने ही प्रॉमिस किया था, इसलिए वो मना भी नहीं कर पाई। इस वक्त वो दोनों किसी रेस्टोरेंट जा रहे थे। कुछ ही देर में वे मुंबई के एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक टेबल बुक की। दीवा अपनी जगह पर बैठते हुए मेन्यू प्रियंक की तरफ खिसकाते हुए बोली, बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे? जो तुम्हें पसंद है वही खाएंगे, प्रियंक ने जवाब दिया। दीवा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, मुझे इंसानों का मांस खाने को बहुत पसंद है, क्या खाने दोगे वो तुम पूछे? हाँ क्यों नहीं, प्रियंक ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपने हाथ को आगे कर दिया। वो आगे बोला, अच्छा बताओ हाथ से शुरू करोगी या फिर कुछ और आगे करूं? दीवा उसे देखकर मुंह बनाया और फिर खाना ऑर्डर कर दिया था। वो दोनों बिल्कुल शांत थे। दीवा ने एक नज़र प्रियंक की तरफ देखा, वो भी दिखने में हैंडसम था। आर्यांश जहां अपने चेहरे के भावों को बिल्कुल शांत रखता था, वहीं प्रियंक के चेहरे से थोड़ा एक्साइटेड नज़र आता था। खाना आने तक का इंतजार करते हुए दीवा ने बात करने का सोचा। अचानक उसने प्रियंक से पूछा, मिस्टर प्रियंक बजाज, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो जो पूछना चाहती हो, प्रियंक ने जवाब दिया। तुम मुझे डिनर पर क्यों ले जाना चाहते थे, आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? दीवा ने आंखें छोटी करके पूछा। उसकी बात सुनकर प्रियंक ने हल्के से हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरा मकसद जानना चाहती हो, तो सुनो, मुझे तुम अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। अब पता चला मेरा मकसद क्या है, पागल लड़की? दीवा ने अपनी ग्रे आईज से उसे घूरते हुए देखा और जवाब में कहा, तुम मजाक कर रहे हो ना, हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं हैं और तुम मुझे पसंद करते हो। दीवा को लगा कि प्रियंक उसे परेशान करने के लिए ये सब कह रहा था। प्रियंक जहां पहले थोड़ा हंसकर बात कर रहा था, वहीं उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। उसने गंभीर अंदाज में कहा, मैं कभी रिश्तों को लेकर मजाक नहीं करता हूं। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो इतना जिद करके डिनर पर कभी नहीं लेकर आता। ये मुझे कैसे पता होगा, मैं तुम्हारी तरह दूसरों का दिमाग नहीं पढ़ सकती हूँ, दीवा ने थोड़ा झेपते हुए कहा। सही कहा, लेकिन फिर भी तुम मुझे पसंद हो, प्रियंक ने जवाब में कहा। उसके बाद प्रियंक ने दीवा के चेहरे की तरफ देखा, जो असहज होकर इधर उधर देख रही थी। प्रियंक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो सच कह रहा था, उसे सच में दीवा अच्छी लगती थी। दीवा ने आगे उससे कोई सवाल नहीं पूछे। वहीं दूसरी तरफ आर्यांश कियाना के साथ उसके घर पहुंचा। जैन फैमिली और कपूर फैमिली की दोस्ती कई सालों से चली आ रही थी। मनीष और समीक्षा को कियाना पसंद थी, लेकिन वो प्यार के मामले में आर्यांश से किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। तो वहीं जैन फैमिली में कियाना के पिता मिस्टर राजवीर जैन पहले ही आर्यांश को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर चुके थे। आर्यांश जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके आने से पहले ही अच्छी खासी तैयारी की गई है। वो समझ गया था कि कियाना ने कॉल करके इस बारे में बता दिया होगा। राजवीर जैन पहले ही काम से फ्री हो गए। आर्यांश को देखते ही वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आज आर्यांश कपूर को कैसे टाइम मिल गया? बस यूं ही, कियाना चाहती थी कि मैं डिनर के लिए उसके साथ आऊं, तो मैं मना नहीं कर पाया, आर्यांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फैमिली रिलेशन होने की वजह से वो जैन फैमिली से काफी खुलकर मिलता था। हाँ, इस पागल लड़की ने पहले ही तुम्हारे आने के बारे में बता दिया था, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, डिनर तैयार है, राजवीर ने जवाब दिया और उसे सीधे डाइनिंग एरिया में ले जाने लगे। वहां कियाना के स्टेप मॉम हर्षाली पहले से मौजूद थी। उसने भी मुस्कुराकर आर्यांश का स्वागत किया। वेलकम बेटा, हर्षाली बोली। थैंक्स आंटी, यूं समझ लीजिए आज खास आपने खुश हैं, बातों ही बातों में हर्षाली ने उससे पूछा। दोपहर को मैंने तुम दोनों का इंटरव्यू देखा, दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे थे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारा और कियाना का रिश्ता क्या है? हर्षाली के इस तरह अचानक पूछने पर कियाना ने उसकी तरफ घूर कर देखा। उसने गलत वक्त पर गलत सवाल पूछ लिया था। डोंट वरी आंटी, मैं और कियाना बस अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे लिए मेरी बहन की तरह है, आर्यांश भी सीधे सीधे जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर राजवीर और कियाना के चेहरे के भाव अजीब हो गए थे। उन्होंने आर्यांश से इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। तो वहीं कियाना हर्षाली को नफरत भरी निगाहों से देखने लगी। ना वो उन दोनों का रिश्ता पूछती और ना ही आर्यांश उसे अपनी बहन जैसा बताता। ये आर्यांश ही था जिसकी वजह से कियाना हर्षाली के साथ अच्छा बर्ताव करती थी, वरना कियाना अच्छे से जानती थी कि हर्षाली की वजह से ही उसकी असली माँ की जान गई है, वो उससे नफरत करती थी। लगता है मैंने कुछ गलत पूछ लिया, तुम बच्चों का अपना डिसीजन होगा, मेरे सामने फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, ये लो और खाओ, हर्षाली ने मामले को दबाने की कोशिश करते हुए कहा और आर्यांश की प्लेट में खाना डालने लगी। आर्यांश ने धीरे से उसे थैंक्स कहा। फिर राजवीर ने गहरी सांस ली और आर्यांश से बोले, तुमने बिजनेस को वाकई काफी अच्छे तरीके से संभाला है और सक्सेसफुल भी हो गए हो, लेकिन आगे के बारे में क्या सोचा है? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या तुम किसी से प्यार करते हो? फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ एक बात श्योर है कि अगर मुझे कोई लड़की पसंद आई तो वो किया की तरह होनी चाहिए, आर्यांश ने जबरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया। वो जानता था कि मामले को कैसे हैंडल करना चाहिए, उसने कियाना का दिल भी नहीं दुखाया।
अच्छा तो तुम्हें हमारी कियाना जैसी लड़की चाहिए, हर्षाली ने दोहराते हुए पूछा, जिस पर आर्यांश ने हां में सिर हिला दिया। इससे कियाना को भी थोड़ी राहत मिली। डिनर करने के बाद वो लोग लिविंग एरिया में बात करने के लिए आ गए थे, लेकिन आर्यांश ने बाथरूम का बहाना बनाया और तुरंत सुमन को कॉल किया। सुमन से उसे पता चला कि दीवा अभी तक घर नहीं पहुंची है, तो वो जल्दी से बाहर आया। अंकल, आंटी किया, आई एम रियली सॉरी, पर फिलहाल मुझे जाना होगा। अभी सार्थक का कॉल आया था, उसने याद दिलाया कि अभी कुछ देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है और मेरा वहां रहना जरूरी है, आर्यांश ने बहाना बनाया। लेकिन तुमने कहा था कि तुम 9 बजे तक रुकने वाले हो और अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, कियाना ने मुंह फुलाते हुए कहा। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मना कर देता, फिलहाल जाना ही होगा, आर्यांश ने जवाब दिया और उन सबको बाय बोलकर वहां से जाने लगा। जाने से पहले उसने कियाना को हग किया ताकि उसका मूड सही हो सके। आर्यांश जैसे तैसे वहां से निकल गया। वहीं दीवा प्रियंक के साथ डिनर करके फ्री हो चुकी थी। उसके पास नवीन का कॉल आया तो वो अपने घर चली गई। जब उसने आर्यांश का कॉल देखा तो उसे याद आया कि मॉल में आर्यांश ने उसे जल्दी घर पहुंचने के लिए कहा था। दीवा के चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव उभर आए। उसने खुद को सामान्य करके कॉल रिसीव किया। कहाँ हो? आर्यांश ने सबसे पहले यही पूछा। डैड का कॉल आया था, इस वजह से घर आ गई थी, दीवा ने धीरे से जवाब दिया। तुम्हारे पास 40 मिनट का टाइम है, जल्दी से घर पहुंचो, आर्यांश ने धीमी सख्त आवाज में कहा। दीवा ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बांध ली थी। उसे कहीं आने जाने तक की आजादी नहीं थी। उसने एक नजर नवीन की तरफ देखा जो उसकी बातें सुन रहे थे। दीवा ने तुरंत ही खुद को नॉर्मल करके कहा, क्या हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई है? मैं अभी पहुंच रही हूं। आप उसे जल्द से जल्द चेकअप करने के लिए लेकर जाइए।
बहाना काफी अच्छा बनाए, लेकिन 40 मिनट में घर नहीं आई तो मैं वहां लेने पहुंच जाऊंगा और फिर एक्सप्लेनेशन देती रहना, आर्यांश ने धमकी भरे अंदाज में कहा। मैं आ रही हूँ, दीवा ने जवाब दिया और जल्दी से कॉल कट कर दिया था। आर्यांश आगे भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन दीवा ने उसे कहने का मौका ही नहीं दिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे चिढ़ है इस लड़की से, जब ये मुझसे पहले कॉल कट कर देती है। फोन को बैग में रखकर दीवा ने प्रार्थना और नवीन की तरफ देखा। वो अभी वहां पर आई हुई थी और उनकी ठीक से बात भी नहीं हुई थी। प्रार्थना की नजर दीवा के हाथ पर बंधी पट्टी पर गई तो वो हल्की घबरा गई थी। दीवा बेटा, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी? प्रार्थना ने जल्दी से पूछा। अरे ये तो कुछ नहीं, सर्जरी के बाद नर्स स्कैल्पल साफ कर रही थी, गलती से एक मेरे हाथ पर लग गया, मुझे चोट आ गई। बस ठीक है, ज्यादा गहरी चोट नहीं है, दीवा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसने महसूस किया कि आर्यांश के साथ रहते हुए वो झूठ बोलने में माहिर हो गई थी। लेकिन ये लापरवाही अच्छी नहीं है, प्रार्थना ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा। उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर दीवा को अच्छा लग रहा था। उसने अपने डैड की तरफ देखा, उन्होंने प्रार्थना को मना लिया था। लेकिन तभी दीवा को आर्यांश के शब्द याद आए। उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था, वरना वो गुस्से में पागल हो जाता था। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। वैसे डैड, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? दीवा ने जल्दी से पूछा। वो जानती थी कि नवीन उसे बेवजह घर नहीं बुलाएंगे, खासकर तब जब वो काम पर हों। नवीन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं रक्षित से मिला था, उसे मैंने रिहा करवा दिया है और उसने मेरी शर्त भी मान ली है, वो मुंबई छोड़ने के लिए तैयार है। नवीन ने उसकी बात मान ली तो दीवा को राहत मिली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्के मायूसी के भाव थे। उसने शांत लहजे में पूछा, वो यहाँ से कब जा रहा है? कल, नवीन बोला। वो दीवा की आंखों में उमड़ रहे जज्बातों को समझ सकते थे। इतनी आसानी से अपने पहले प्यार को भूलना मुश्किल नहीं था, खासकर जब उसने उसके साथ लंबा वक्त बिताया था। ठीक है, मैं फिलहाल जा रही हूँ, इस बारे में बाद में बात करते हैं, दीवा ने उठते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और आगे से लापरवाही मत करना, प्रार्थना ने उसे जाते जाते कहा। उन्हें बाय बोलकर दीवा जल्दी से अपनी गाड़ी में आ गई थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, उसके पास रक्षित का कॉल आया। दीवा ने कॉल उठाया तो रक्षित ने सीधा यही कहा, दीवा मैं कल हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? हाँ मिलते हैं, दीवा ने जवाब दिया। वो भी उसे एक आखिरी अलविदा कहना चाहती थी। फिर कहाँ मिले? रक्षित ने पूछा। कुछ पल रुककर उन दोनों ने एक साथ कहा, एम्पीरियल हाई स्कूल। उन दोनों के इतने वक्त तक साथ रहने पर एक आपसी कंपैटिबिलिटी बन ही गई थी। वे जानते थे कि दोनों एक दूसरे को क्या कहना चाहते थे। अगर रक्षित ने उसे धोखा नहीं दिया होता तो दीवा कभी आर्यांश से नहीं मिलती, पर किस्मत भी अजीब थी। दीवा ने तुरंत खुद को नॉर्मल करके कहा, ठीक है फिर कल मिलते हैं, थैंक यू मुझसे मिलने आने के लिए, रक्षित बोला और उसने कॉल कट कर दिया था। दीवा ने भी आगे कुछ नहीं कहा। उसने आर्यांश से छुपकर रक्षित से मिलने के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन एक बार फिर उसके लिए मुश्किल खड़ी होने वाली थी। कई बार दीवा जानबूझकर गलतियां करती है, वो भी आर्यांश जैसे शख्स के आगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।